आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, कहा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। राज्य में आज से 2 अक्टूबर तक जल हमारा जीवन धारा थीम पर चलाया जा रहा है सुजल शक्ति अभियान, और अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण और नकली उर्वरक निर्माण की संभावना बढ़ जाया करती है। डॉ यादव ने कहा कि उर्वरक के अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में उर्वरक मूवमेंट पर भी सतत निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज भोपाल में सोयाबीन उपार्जन और खाद उपलब्धता तथा वितरण से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार डीएपी के स्थान पर एनपीके और लिक्विड नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि राजस्व अमला जनप्रतिनिधियों के साथ फसलों की क्षति का आकलन सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अमानक स्तर का खाद बीज विक्रय, भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। वहीं श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये मन की बात कार्यक्रम का 4वां अंक होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी के साथ विकसित हुआ है। बालाघाट में सड़क, बड़े पुल, ओवरब्रिज और रेल कनेक्टिविटी में काफी प्रगति देखने को मिली है। जिले के अभय कोचर ने बताया है कि लोगों को आवागमन और रोजगार सहित अन्य सुविधाओं का यहां खासा लाभ मिल रहा है।
विकास जो बोलते हैं कि मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, चाहे सड़कों का निर्माण हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, तो ये मान के चलिए कि आजादी के बाद बालाघाट ने पहली बार ये सब चीजें देखा है। 3 से अधिक बड़े फ्लाईओवर, 17 से अधिक छोटे फ्लाईओवर, 6 लेन, 4 लेन, मतलब जो कभी बालाघाट सोच नहीं सकता था। हमें नदी यदि पार करना है, माँ वैनगंगा नदी पार करना है, तो हमारे पास उस पार जाने के लिए केवल एक ब्रिज था। आज उस नदी पे 7 ब्रिज का निर्माण चल रहा है और 2 ब्रिज कंप्लीट हो चुके हैं।
आकाशवाणी भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत आज नगर निगम महापौर मालती राय ने कार्यालय परिसर और आकाशवाणी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भोपाल शहर को स्वच्छता में अग्रणी बनाना है। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आकाशवाणी परिसर में पौधरोपण भी किया। समाचारों में अब वक्त चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन और ग्रामीणों में नल जल योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज से 2 अक्टूबर तक जल हमारा जीवन धारा थीम पर सुजल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ अन्य विभागों के समन्वय से ग्राम में जल के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में नल जल योजना क्रियान्वित होने वाले चिन्हित ग्राम में योजना की निगरानी के लिए गठित की गई ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, शिक्षक, स्व सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों आदि के द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नल जल योजनाओं के संचालन में उत्कृष्ट सेवा देने वाले ग्रामवासियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में माननीय न्यायाधीशों के लिए बौद्धिक संपदा पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पहली बार न्याय संपदा की नीति बनाकर हम सभी को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया था। संगोष्ठी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार कैत, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और अन्य न्यायाधीशगणों ने सहभागिता की। इस अवसर पर नवाचारों के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में मानसून ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में सिस्टम का असर है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इसीलिए अगले 24 घंटों में कुछ जिलों में बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने शिवपुरी, गुना और निवाड़ी में अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में बूंदाबांदी के आसार है। शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, सागर और ग्वालियर संभागों में बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के बांध और तालाब एक बार फिर छलक उठे हैं। इस सीजन में प्रदेश के करीब 250 में से 200 बांध लबालब हो चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया। कल मैच के पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद खराब मौसम के कारण मैच आगे शुरू नहीं हो सका। भारत वर्तमान श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति क्रूरता को रोकने और सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। खंडवा जिले में स्वच्छ भारत महाअभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आगरमालवा में आयोजित किए गए दिव्यांगजन चिन्हांकन शिविरों में 268 दिव्यांगों का चयन किया गया। वरिष्ठ जनों को आत्मसम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को नर्मदापुरम जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया जाएगा। कटनी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अनूपपुर जिले में खरीफ 2024 ई उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन फसल का पंजीयन 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला चिकित्सालय नीमच में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर जिले में आगामी पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा बलवा परेड का आयोजन किया गया। और बिलासपुर कटनी सेक्शन के बीर सिंहपुर स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य 11 अक्टूबर तक चलेगा। प्रादेशिक समाचारों को इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।